Thank you. Thank you. सभा का कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। कोई भी सभा के आरंभ में सभापति का निर्वाचन ये प्रथम कर्तव्य है। तो हमारी आज की सभा के घोषित सभापति हैं श्री फतेहलाल जी गोयल। स्वागत समिति में से मैं श्री बांके बिहारी जी माहेश्वरी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज के सभापति जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। स्वागत समिति में से श्री माहेश्वरी जी बांके बिहारी जी माहेश्वरी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री बलबीर सिंह जी बंसल ये सभी महाराज जी को माल्यार्पण करें। माल्यार्पण जो भी महाराज जी को करना चाहते हैं वो आरंभ में सभा के आरंभ में जो भी स्वागत महाराज जी का माल्यार्पण के द्वारा करना चाहते हैं उनके सेवक भक्त शिष्य नागरिक जो भी वो महाराज जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत है। एक सनातन परंपरा है कोई भी कार्यक्रम के आरंभ में मंगलाचरण भगवान नाम के द्वारा किया जाता है। आरंभ के मंगलाचरण के लिए मैं पंकज चतुर्वेदी को आमंत्रित करता हूं। श्रीमान पंकज चतुर्वेदी वो यहाँ आवे और श्रीमद् भागवत के दो मंगलमय पद्यों के द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत करें पंकज चतुर्वेदी।
बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। संचिंताये भगवता चरणारविंदम् वज्रांकुशाध्वज करो रोलांचनाड्यम् ओत्तुंगरस्तरिलतान्नखचक्रवाल से ये अनुरोध करता हूं कि वो
अपने भाव महाराज जी के प्रति अभिव्यक्त करें श्री बरसाने लाल जी भले विराजे
अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, सभी विद्युतजन, सभी संत महानुभाव को उपस्थित नगर के संविधान नागरिक जन व मार्क्सवादी महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं आप सबका भी यहाँ स्वागत कर रहा हूँ। महाराज श्री सभी विदेशों में भारत की संस्कृति और भारत की गरिमा को जन जन तक पहुंचाकर श्री कृष्ण का संदेश विदेशी नागरिकों को भी पहुंचाकर उन्होंने भारत की गरिमा बढ़ाई है, उसके लिए मैं किन शब्दों में महाराज श्री के चरणों में अपना निवेदन रखूं, मेरी जोर में नहीं आ रहा। मैं केवल इतना ही इस अवसर पर महाराज श्री का को अपना प्रणाम करते हुए प्रभु से कामना करूंगा कि वो महाराज श्री में संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने की क्षमता को देकर उनके स्वस्थ उन्हें स्वस्थ रखें, जिससे कि वो भारत के मान और सम्मान को देश और विदेशों में चारों ओर इसी प्रकार फैलाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में उनका पुनः नमस्कार।
अमेरिका ने भारत जी के सभी कार्यक्रमों में उनका एक अभिन्न अंग बनकर के रहने वाले वैष्णव श्री विष्णुदास जी, जो सौभाग्य से संसद से यहाँ उपलब्ध हैं, हमें भारत जी के साथ अमेरिका में वो रहे हैं और उन्होंने भारत जी को और भगवान नाम प्रचार को बहुत सहयोग दिया है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना गुरुदेव स्मरण उन्हें क्या उत्कृष्टता लगी, क्योंकि देश विदेश में तो भारतीय विद्वान पढ़ाते ही रहते हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्रीय यहाँ के मथुरा के पढ़ाए उन्होंने महाराष्ट्र के अमेरिका पढ़ाने में अमेरिका वासियों को क्या आकर्षण हुआ, क्या वंचित से लगा, कृपा करके हमें
मैं अमेरिका में जिस स्टेट में रहता हूँ उसका नाम है टेक्सास, और वो वहाँ पे वहाँ के रेगिस्तान के समान है। वहाँ पे बहुत गर्मी और बहुत रेत रतीला है, और जिस तरह का अमेरिका का एक वो नमूना है, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ों की बहुत है। वहाँ पे पैसा बहुत है, अमीरी बहुत है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ की जहाँ वहाँ सबसे अधिक कमी है वो है प्रेम। पति का पत्नी से, माता का पुत्रों से, बच्चों का बड़ों से, किसी में भी आपस में प्रेम भाव नहीं है। भगवान से प्रेम करने की बात तो बहुत दूर की रही। तो महाराज जी ने अपनी जो वहाँ का यात्रा थी उसमें प्रेम बांटने को खाली भगवान से ही प्रेम नहीं, अतिथि से प्रेम, माता पिता से प्रेम, पुत्रों से, अपने बच्चों से प्रेम, इसको इस संदेश को देने को उन्होंने अपना मेन कार्य बनाया। जिस दिन महाराज ह्यूस्टन पहुंचे, बहुत कड़कती गर्मी चल रही थी उन दिनों में, लेकिन महाराज ने जिस दिन आना था, हम लोग को अभी तक याद है, एकदम घने बादल छा गए और बहुत अच्छा मौसम हो गया। उसके बाद जितने दिन 12 दिन महाराज रहे, मौसम बहुत ही अच्छा रहा। बड़े महीनों से वहाँ पे बरसात नहीं हो रही थी। अब वहाँ पे जब भागवत कथा हुई तो वहाँ पे जिस दिन भागवत कथा के आखिरी दिन खूब मूसलाधार से वर्षा हुई, चंद नवीन के स्वरूप को ध्यान होगा। तो वास्तव में ऐसा लगता है कि जो महाराज जिन्हें वहाँ पे वहाँ के रेगिस्तान में कृष्ण प्रेम की मूसलाधार वर्षा की, वहाँ पे जैसे वो बता रहे थे कि कई प्रकार के बड़े बड़े प्रवचन करने वाले लोग जाते हैं, लेकिन मैंने उन लोगों के भी प्रवचन सुने हैं, लेकिन महाराज जी के साथ जो वहाँ पे लोगों का एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अलग था। और मैं विशेष करके मैंने देखा कि जिसने भी जो भी महाराज से मिला, भले किसी को भी नहीं मालूम था कि वे कौन हैं, लेकिन पहली बार भी जो भी कोई उनसे मिलता था उसके स्वतः ही आंखों में आंसू आ जाते थे, उनके हृदय का प्रेम ऐसे उमड़ करके बाहर आता था। और महाराज जिसको भी बेटी या बेटा कहते थे वे बस उनका होकर के रह जाता था। तो महाराज ने बहुत दिल खोल करके सबको अपने प्रेम से वशीभूत कर लिया। और वास्तव में आज तक भी अभी तक भी वहाँ पे लोग सब यही कहते हैं कि हमने बहुत संत देखे हैं लेकिन इंडिया ऐसा अभी तक कोई नहीं देखा। और महाराज ने जो वृंदावन है वहाँ पे वास्तव में ब्रज का भाव वहाँ जाकर के लोगों को दिया। महाराज के ह्यूस्टन में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, वहाँ के कई लोग बहुत दूर दूर से, हजारों मील दूर दूर से चल करके लोग आए और महाराज से इतने प्रभावित हुए कि कई लोग उनके साथ से पूरे अमेरिका में उनके साथ एक सिटी से दूसरे सिटी गए। किसी भी समय उनके साथ कम से कम 60 से 100 लोग उनके साथ ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे। ह्यूस्टन से महाराज कैलिफोर्निया गए, वहाँ पे कई शहरों में गए जहाँ की हर प्रवचन में 250 से 500 से और अधिक लोग भी आते थे और कृष्ण प्रेम में संपूर्ण मुग्ध हो जाते थे। और बस दो बातें कहना चाहूँगा कि वहाँ पे इतने लोग प्रभावित हुए और कईयों ने वहाँ के न्यूज़पेपर्स में, रेडियोस में बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स भी आए जिनकी कॉपीज नवीन कृष्ण प्रभु के पास भी हैं। वहाँ पे हम लोग एक मंदिर में गए तो वहाँ के टेंपल प्रेसिडेंट ने कहा कि जब महाराज जी प्रवचन कर रहे थे तो ऐसा लगता था कि कोई बहुत ही विलक्षण चित्रकार ब्रज की चित्रकारी कर रहा हो। तो ऐसा सुंदर महाराज ने ऐसे लोगों को, जिनको भी अभी गीता का भी ज्ञान नहीं है, उनको भी राधा कृष्ण प्रेम का बहुत ही सरल और सरस शब्दों में उनको ज्ञान दिया। और महाराज सच में वृंदावन के भाव से ही वहाँ गए थे और वृंदावन वहाँ बना करके आए, जो उन्होंने बहुत ही सुंदर दो लाइनों में अपनी यात्रा के अंत में कहा कि मुझे अमेरिका में आना ऐसा लगा कि जैसे मैं प्रेम गली से कुंज गली और कुंज गली से मान गली में जा रहा हूँ। तो इसी भाव को वहाँ महाराज देकर के सबको मंत्रमुग्ध करके उन सबके दिल चुरा करके अपने साथ वृंदावन में ले आए हैं। और उनसे यही प्रार्थना है कि हम सबको अपने श्री चरणों में रखें और पुनः अमेरिका आए और हम सबको अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें।
वहाँ के लोग अधिक थे, भारत के कम है और उधर के लोग भी अधिक है।
कार्यक्रमों में जो अनुभव किया वो इतना रसीला है, ज्ञानं किमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः पञ्चकौपुत्रूपस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. I offer my unlimited dandavat to my Diksha Guru, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And I offer the same unlimited lakhs of pranams to my Shiksha Guru, His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Narayan Maharaj. First, I'd like to apologize for not being able to speak in Hindi due to my lower birth. I hope in my next birth I'll take birth in India so I can understand you all better. I was with Srila Maharaj-ji throughout his Western tour from Holland to England to Houston, Los Angeles, Badger, Oregon, San Francisco, and New York. And I must say that it was the most exciting experience since our own Srila Prabhupada came to America in 1966. It was also very reminiscent of Krishna speaking to Arjuna on the Battle of Kurukshetra. If Krishna was speaking to Arjuna just in his palace, with no war going on, maybe it wouldn't have seemed so interesting. But because of the whole Mahabharata situation and the tension between the Kauravas and the Pandavas, so the excitement of Krishna speaking Bhagavad Gita was heightened a thousandfold. Similarly, Krishna arranges everything for his pure devotees like Srila Maharaj-ji, and just at the time that he was, just before he was going to come to America, Krishna arranged a very exciting situation. The top leaders of our International Society for Krishna Consciousness, not understanding the mission of Srila Prabhupada, broadcasted all over the entire planet of devotees of ISKCON and congregation members that no one who wants to have faith in Srila Prabhupada should associate with Srila Narayan Maharaj. So they created a platform for very exciting preaching. Our Srila Prabhupada has been preaching since 1966 in all of his books, Srimad Bhagavatam, Nectar of Devotion, Chaitanya Charitamrita, Krishna book, 10th canto Srimad Bhagavatam, all about the mission of Chaitanya Mahaprabhu. But none of us could understand it. He was speaking about the need for accepting a Rasika Bhakta as one's spiritual master. He was speaking about the importance of coming to Raganuga Bhakti and taking shelter of a Ragamika Bhakta to enter the realm of Braj, which is the goal of life of the Jiva. But we could not understand him. So when Srila Gurudev, Srila Narayan Maharaj was speaking these same things, we who did not understand, the leaders of ISKCON who did not understand Prabhupada in the first place, were preaching all over the world that Srila Maharaj was speaking different from Prabhupada. So thinking, it appeared that they were saying something against Srila Maharaj, but actually they were glorifying him because he was saying the same thing as Chaitanya Mahaprabhu and Rupa Goswami, Viswanath Chakravarti Thakur, Narottam Das Thakur. Actually, they were speaking against their own Srila Prabhupada, trying to take him out of the disciple succession, trying to make him not a Rupa Nuga Bhakta. So Srila Narayan Maharaj came to the West to establish Srila Prabhupada as a bona fide parikar of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Rupa Goswami. In all the different countries, in Holland, in America, and in England, he preached the same thing as Srila Prabhupada, illuminating all of Prabhupada's teachings. And because of the situation that Krishna perfectly made, using the ISKCON top leaders as instruments, everyone wanted to hear, who is this Narayan Maharaj? Is he for Prabhupada or against Prabhupada? What is his message? Did Prabhupada actually preach about Raghunuga Bhakti and Rasika Bhaktas? So Srila Narayan Maharaj's preaching became utmost successful because of this wonderful arrangement that Krishna made. Had there not been a Chandravali party, the Rasa dance would have not been so exciting. Had there not been Jatila, Kutila, and Abhimanyu, the Ras or relationship of Krishna and Radharani would not have been so exciting in Parakiya Bhav. So Srila Maharaj created, as he said, he came for three reasons. He came to go to all the places where Srila Prabhupada created temples all over the West and take the dust from Prabhupada's feet in all those places and abhishek himself with that dust to give him energy to continue Prabhupada's mission. And thirdly, to take the water from Srila Prabhupada, the water of pure bhakti, and pour water on the seeds and sprouts and dried up plants, dried up seeds, dried up sprouts, and dried up plants who were Prabhupada's followers and aspiring followers and disciples. He explained that Prabhupada cut the jungles of Mayavad philosophy and atheist philosophy, and he tilled the soil and planted the seeds of bhakti all over the world. So now some of those seeds are still seeds, some are sprouts, and some are plants. But all of them are dried up because of lack of the water of pure Hari Katha from the Rasika Vaishnava.